अब हम चलते हैं सूरत के अल्फाज पे, थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत करवा के आपको फिर इसकी आगे बाकी चीज़ों पे लेके चलूंगी कि सूरत अल बकरा में अल्लाह सुबहाना ताला ने शुरू में पहली आयत, आप देखिए पहली आयत देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ये क्या हो गया? हमें इसको क्या पढ़ना था? अलम अलाम कह देते? नहीं, कुरान पाक की 14 सूरतों के शुरू में इस तरह के अल्फाज आते हैं जिसको हरूफ मुकत्तआत, कैसे बोलना है मेरे साथ ही बोले, मुकत्तआत। अच्छा हम क्या बोलते हैं? मुकत्तआत। ते नहीं है, ते तो है ही नहीं अरबी में, या ता होता है या ती होती है। हरूफ मुकत्तआत क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। क्यों? पहला सवाल ही बात हो गई रही थी इस दिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हिदायत दे दे, तो जब हिदायत की दुआ मांगी तो पहला लफ्ज वो आया जिसके मन ही नहीं पता। बात समझ गए? आपने कहा था अल्लाह ताला गाइड मी, बस मैं आपसे कहती हूँ कि जरा मुझे यहाँ से स्टोवनर जाने का रास्ता बता दें, तो जो पहले ही लफ्ज आप बोले उसका मन ही कोई ना हो, तो मैं कहूंगी मैं आपसे गाइडलाइन चाह रही हूँ, मैं आपसे इंस्ट्रक्शन चाहती हूँ, हिदायत मांग रही हूँ, और आप मुझे वो लफ्ज बोल रहे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ। क्यों? इसका जवाब लिखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले किताब से वास्ता था। अहले किताब खुद को बहुत पढ़े लिखे मानते थे, जैसे हर दीनदार तबके को ये गुमान होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकारत से उम्मी कहते थे, कहते थे अनपढ़ों का रसूल है, अनलेटर्ड है, अलिफ बेते भी नहीं इनको आती। जिस चीज़ को उन्होंने नबी सल्लम के लिए हकारत वाली बात की, अल्लाह ने उसको नबी का एजाज कह दिया। सूरत अल अराफ में आप पढ़ेंगे नबी सल्लम की खूबियों में आपने अल्लाह ने फरमाया कि नबी ये लुम्मिश, अनपढ़ों का नबी। जब उन्होंने अल्लाह के नबी को अनपढ़ कहा ना, तो अल्लाह ने उसकी जुबान से जो पहले अल्फाज निकलवाए, अलिफ लाम मीम, अल्फाबेटिक्स, सवाल उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि तुम उस शख्स को अनपढ़ कहते हो, तो बताओ उसको अलिफ किसने सिखाया, लाम किसने सिखाया, मीम किसने सिखाया? गोया कि उनकी गलत फहमी दूर की गई। इसीलिए आपको पता है कि यहूद ने नबी सल्लम पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया था, कहते थे इनको कोई पढ़ बाहर से सिखाता है, ये कोई बाहर का नुमाइंदा है, इधर भेज दिए गए हैं। तो बाहर से तो वाकई सिखाए जाते थे ना, जिब्राइल भी तो बाहर से ही आते थे ना। तो अल्लाह ताला ने यहूद के तकब्बुर को तोड़ने के लिए सूरत बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम को पेश कर दिया। और इसके बारे में मेरा आपका ईमान है कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह जानते हैं। अच्छा बाज़ जगह आप पढ़ेंगे हाज़ा सिर्रुम बैन अल्लाह ही व बैन रसूली, ये गलत जुमला है, बहुत सारी तफसीरों में मिलेगा। बाज़ इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये इसके मानी अल्लाह और उसके रसूल को पता है। जुमला बदल लीजिए, अलिफ लाम मीम के मानी सिर्फ अल्लाह को पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि बस ये याद रख लो कि अलिफ लफ्ज़ पे 10 नेकियां, लाम पे 10 नेकियां और मीम पे 10 नेकियां, ठीक है, बस इससे ज्यादा इसका मानी नहीं पता, तो लिहाजा अलिफ लाम मीम है। अब सवाल पैदा होता है कि ठीक है मान लिया जी, यहूद को बेबस करने के लिए तो अलिफ लाम मीम को बना दिया था बहुत एक बुनियाद के, देखो तुम्हें, तुम इसको अनपढ़ कहते हो, इसको तो बहुत कुछ आता है, तो अब आज मेरे आपके लिए अलिफ लाम मीम कैसे हिदायत है? फिर ये दूसरा अगला सवाल लिखिए कि मेरे आपके लिए अलिफ लाम मीम में क्या हिदायत है? बस आप कुरान पढ़ने आए और आते ही यहाँ आपको, यहाँ मैनेजमेंट का कोई बंदा कोई ऐसी बात कह देता है जो आपको समझ ही नहीं आती। आप कहते हैं व्हाट, क्या मतलब? आप कहते हैं मैं आई थी आके पढ़ने बैठी, इन्होंने आते ही हमें कहा चले साइन आउट करें, साइन इन लिख करें। आप आए पढ़ने, आपने सोचा मैं आ रही हूँ बस पढ़ूंगी सीधा आ जाऊंगी, दरवाजे पे आपको रोक लिया गया, प्लीज साइन कर दें, तो बाज़ दफ़ा आपका, आप ऑफेंड हो सकते हैं, आपको गुस्सा आएगा। सवाल पैदा होता है हमारे लिए अलिफ लाम मीम क्या है? ये हमारे भी अंदर के गरूर को तोड़ता है। अलिफ लाम मीम का शुरू में आना हमें क्या हिदायत देता है? कि यहाँ आने के बाद तुम्हें वही मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह देगा, तो अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो। समझ आई? आप में से हर सिस्टर हर बहन सोचे, मुझे यहां आकर सिर्फ तजवीद ही समझ आई है, मुझे तो उर्दू भी नहीं आती, तो आप क्या कहें? अल्लाह जी मैं आपके इस फैसले पे राजी हूं क्योंकि अलिफ लाम मीम के भी नहीं मानी मुझे नहीं आए। तकब्बुर की नफी है इसमें, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपनी अना को तोड़ें। और याद रखिए, दो लोग कभी भी इल्म नहीं सीखते, अल मुतकब्बिरु और अल मुस्तही। तकब्बुर करने वाला वो कौन है? घड़ी देख रहा है, क्या टाइम है, कितने बजे होगी, क्या हो गया, ये बात तो पहले भी पता है, ये तो सुनी हुई है, तो बस अंदर बढ़ाइए, ये मुझे पता है। नहीं सीखेंगे। याद रखिए, आप इल्म तब ही लेंगे जब आप अपने आप को न्यू बॉर्न बेबी की तरह ब्लैंक महसूस करेंगे। जिस बंदे के दिल में मैं आ गई ना, उसका दिल कुरान की महफिल में नहीं लगता। अल्लाह ताला आपको मुझे भी यही सिखा रहे हैं कि बहुत बड़े आलिम बन के ना पढ़ाना इधर, कि मुझे बहुत आता है पढ़ाना, और मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ, मैंने जब भी पढ़ाना होता है ना, तो मैं इस तरह पढ़ा रही होती हूँ जैसे मैंने आज पहली दफा पढ़ाना है। मुझे ऐसे गम लगा होता है कि अल्लाह ताला मैं इसका हक अदा कर पाऊंगी, ये छोटी बात थोड़ी है। आप भी जरा खुद को चुटकी तो काटे, ये कोई छोटी बात है जो आपके मेरे हाथ में है। सदर ओबामा का कोई लेटर आए और आपसे कोई कह दे कि जरा इसको नॉर्वेजियन में ट्रांसलेट कर दे, हाथ कांपेंगे आपके? हाय, मैं उसकी उसकी बात ना बदल दूं, इंटेंसिटी ना बढ़ा दूं, कम ना कर दूं, शिद्दत ना कर दूं, क्या करना है आपने? इंग्लिश से नॉर्वेजियन में ट्रांसलेट करना है। हालांकि सदर ओबामा बेचारा आपको क्या कहेगा, हो सकता है आप जिस जुबान में करें उसको तो वो पढ़नी भी ना आती हो। तो मालिक कायनात, मालिकुल मुल्क, मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमान, अर्रहीम, और जिससे इतने वादे पीछे करके आए हैं, जिस दिन उसका कलाम पढ़ने बैठे टूट के बैठे। अंदर की बड़ाई और अपने आप को कुछ समझना और इस सोच में रहना कि बस बस ठीक है, ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, तो लिहाजा ये चीज इंसान के लिए दुरुस्त नहीं। इसकी आपको बीसियों तफसीरें मिलेंगी किताबों में। मैं आपको हमेशा की तरह इस दफा भी यही कहूंगी कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, अल्लाह जानता है इससे क्या मुराद है। अच्छा चले, यहाँ छोटी सी बातें भी कर लेते हैं। कुछ घरों में आपने ये जो लोहे कुरानी के नाम पे कितने लिखे हुए देखे होंगे, देखे कभी? यहाँ तो नहीं देखते लोगों के, पाकिस्तान में मैंने भी देखे हैं, दीवार पे लगाया, वो 14 नक्श बना के दायरे बनाए और लगा दिए। क्यों भाई? कहते हैं इससे बरकत आएगी। अब आप मुझे बताइए कि जब ये कुरान में नाजिल हुए तो क्या अल्लाह के नबी एक जुमला नहीं बोल सकते थे कि लोगो इसका मानी तो नहीं पता, वैसे इसको लिख के लगा लो तो तुम्हारा घर चोरों से महफूज होगा और जिन भूत नहीं आएंगे। जिस लफ्ज का मानी नहीं पता, फिर उसके अंदर और क्या बात है। और वैसे भी आप देखिए कि इसलिए भी शुरू में आते हैं कि ये मक्का वालों का अंदाज था, अल्लाह ताला दिखाना चाहता था कि ये एक फेमिलियर स्टाइल है, ये कोई ऐसा नहीं है, नहीं जी, इस पर कोई इतराज नहीं कभी उठा। तो लिहाजा अलिफ लाम मीम पे इतनी ही बात काफी है, ना तो इसके आपको कोई जायचे बना के लगाने हैं, ना इसके तावीज बना के पढ़े। और अक्सर लोगों ने जो तावीज पहने होते हैं, आप खोले ना तो उसमें लोहे कुरानी होता है। कुछ लोगों ने दुकान के बाहर बरकत के लिए लगाया होता है, एक बड़ा पंफलेट सा भी बटता है हमारे शहर मुल्कों में, रोजी में बरकत के लिए, तो उसमें ये बना होता है। ये सिर्फ मैन मेड चीजें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। चलिए, अलिफ लाम मीम तो हो गया, आगे चलते हैं। जालिकल किताबु ला रैबा फी, ये है वो खूबसूरत जुमला जिसको आप कई मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ तर्जमे हैं। जालिकल किताबु, ये है वो किताब, यानी इसके मुख्तलिफ मानी क्या बनते हैं, जरा लिखिए, फिर मैं आपको एक एक लफ्ज के साथ लेके जाऊंगी। एक तर्जमा क्या बनता है इसका, अलिफ लाम मीम ही वो किताब है। मुफस्सरीन कहते हैं अलिफ लाम मीम भी कुरान का एक नाम है। तो अगर पहला तर्जमा इसका लिखिएगा कि अगर अलिफ लाम मीम वाले हिस्से को इसके साथ जोड़ें तो क्या मानी बनता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, अलिफ लाम मीम ही वो किताब है कि फी ही हुदल लिल मुत्तकीम, या ला रईब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह इसका एक और तर्जमा बनता है, ये वही किताब है बेशक जिसमें हिदायत है तकवा वालों के लिए, ये भी एक मानी है। अगर आप अपने मुसफ पे देखिए, और जरूर देखिएगा, मैं भी अपने पास जो रखा हुआ उसको देख रही हूं, जालिकल किताबु ला रईबा, इसके बाद क्या आ रहा है, स्वात लाम सल्ला, और नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए अपने कुरान को, शाबाश जीम, क्या मतलब है आपको पता है इसका? देखिए सल्ला का मानी होता है मिला लो, और नीचे जीम का मानी में जायज, ये वो मुकाम है, और ये बहुत कम है कुरान पाक में, जालिकल किताबु ला रईब। मैं इधर रुक जाऊं तो जीम वाली बात है कि जायज है, रुक सकते हैं। अब तो कुरान पाक की आयतों में कुछ आयतें ऐसी जिसके बीच में आप नहीं रुक सकते, मसलन ला तकरब उस सलात, मैं रुक गई, नमाज के करीब भी ना जाना, नमाज के करीब ना जाना, सूरत निसा की आयत है। अब मैं किसी को देखो कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब भी ना जाना, तो अगला बंदा कहेगा कि आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, क्या करना था, ला तकरब उस सलात इल्ला वान तुम सुकारा। बात पूरी हो गई ना कि नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे में हो। तो हर जगह नहीं रुक सकते, लेकिन यहाँ ला रई पे आप रुक सकते हैं, ये जीम है, ये जायज है। अच्छा अब दोबारा पढ़ूंगी, फिर देखिएगा जरा अरबिक टेक्स्ट को। ज़ालिकल किताबु ला रईबा फी। अब मैंने क्या किया, रैब को फी ही से सल्ला मिला दिया, ये भी जायज है। अच्छा मजे की बात देखिए, फी ही के बाद फिर आपको क्या दिख रहा है, जीम दिख रहा है, ये तीसरी तरकीब है। अब देखिएगा मैं तीसरी तरह पढ़ूंगी, ज़ालिकल किताबु ला रईबा फी, फिर रुक गई, फिर हुदा लिल मुत्तकीन आगे एक अलग है। यानी ये कोई खेल नहीं है, वल्लाही इसके ऊपर एक घंटा बात हो सकती है अगर मैं आपको मुश्किलों में डालूं। इसमें हर लफ्ज के अंदर एक मानी छुपा हुआ है। पहली सूरत आप देखें, चले लफ्ज जालिका से जरा थोड़ा सा एंजॉय करें। ये बताइए कि लफ्ज जालिका एक लफ्ज है, दो है, क्या है ये जालिका, क्या है जी, आप बताइए फरमा। आपने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा ना, कुछ याद होगा, इसम इशारा है, ठीक है, ये तीन लफ्ज है, लिखिए जरा। देखिए देखने में लफ्ज है जालिका, एक हर्फ बन रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जा ली का। असल लफ्ज क्या है, जा। अगर आप पढ़े ना कुरान में, मन जल्लजी यशफा इंदहु इल्ला बिज़नी, तो वहां के मन जल्लजी में जाल है एक सिर्फ, जा। इसी तरह मन जल्लजी युक्रिदुल्लाह करदन हसना, तो जा है असल में इसम इशारा। इसम इशारा क्या है, मैं आपसे कहती हूँ, वो देखिए लाइट, तो अब ये जो मेरा लाइट को दिखाना था आपको वो था जा। ली क्या है, बुलंदी के लिए, और का क्या है, तुम देखो। अल्लाह अपने नबी को इसमें शामिल कर रहे हैं कि तुम इसे गौर से देखो। मैं आप देखिए जरा थोड़े से मेरे एक्शंस देखिए, फिर आपको बात समझ आ जाए। मैं आपसे कहती हूँ वो लाइट है, मैंने इशारा कर दिया ना, वो लाइट है, हाथ से भी कर दूं ठीक है, आपने समझ लिया। फिर मैं आपसे कहती हूँ वो लाइट है, अब मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज किया, और तीसरा कि मैं आपका कंधा पकड़ के, आपको पकड़ के कहती हूँ वो देखें, आप देखें कि वहां लाइट है। तीसरी बात में शिद्दत है ना, ये जो का वो ये का तुम गौर से देखो, ये यानी इसमें किसी चीज की बुलंदी है। ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब, ये मक्का में से निकलकर मदीना में आए। अभी मैंने सारे जुमले बोले मदीना के यहूद के, असल में अहले किताब को दिखाया जा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना बच्चे को, ऐसे आप कान पकड़ते हैं ना, आप क्या कहते हैं, ये है वो किताब जो मैंने आपसे कहा था पढ़े। यहां मक्का वालों को बताया गया ये किताब मौऊद है, जिस किताब की पेशन गोइयां की गई थी वो ये है, तुम इधर उधर क्यों चले गए। और किताब नहीं, अल किताब, नोट कीजिएगा इसको भी। ये तो निकाह गया कि जालिका किताबु या जालिका किताबुन, अल किताब क्यों कहा गया, इसलिए कि मक्का वालों के पास किताब थी, गुम गई, उन्होंने तो भुला दी थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ सहीफे थे इब्राहिम और इस्माइल के, वो भी लॉस्ट थे वो लोग। मदीना में जब नबी सल्लम आए तो यहूद के पास एक बड़ी खूबसूरत किताब थी, जिसको ये क्या कहते थे, तौरात कहते थे, वो कहते थे यही ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे इसी बारे में, आप पढ़ेंगे मान अनसख मिन आयत नुनसिहा नाति भी खैर मिनहा, कहते थे जब है जो हमारी किताब तो अब एक नई किताब की क्या जरूरत है। जैसे आज कोई मजहबी सोच रखने वाला बंदा कहता है हम जो इधर पढ़ा रहे हैं तो अब आपके पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम जो इस शहर में दीन का काम कर रहे हैं तो आपकी क्या जरूरत है। टोन समझ रहे हैं, मदीना के यहूद का ख्याल क्या था कि नबी सल्लम आए पर हमारी किताब पढ़ाएं, कौन सी किताब, पढ़ा देते कोई हर्ज नहीं, पर उस किताब में इतने सबके लाख के, वो तो वर्कबुक बना ली थी उन्होंने। दूसरी बात है वो अपग्रेड नहीं थी, वो तो बहुत साल पहले आई थी। तो कुरान की तरफ इशारा करके गोया के यहूद के कान पकड़ा कर कहा गया जालिकल किताब, जैसे आप हाथ से, ये है वो किताब जिसको तुमने मानना है। यानी असल यहां खिताब का रुख साबिका उम्मत की तरफ है, इसीलिए अल किताब कहकर बता दिया असल किताब ये है। देखिए अरबी जुबान में अल का फर्क क्या होता है, जैसे बुक और दी बुक, इंग्लिश में आम किताब को कहते किताब, कोई भी किताब होगी तो अल कह देंगे या दी बुक कह देंगे तो कोई खास किताब होगी। तो गोया कि इससे मुराद ये है कि ये वो असल किताब है जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पेश किया। अच्छा, अब आपको मुश्किल में ना डाल दूं तो लिख लें कि यहां है ये किताब लेकिन मानी है मकतूब। नहीं समझ आई? अरबी जबान में किताब किसको कहते हैं? अच्छा, आप और मैं तो कहते हैं ना, मसलन ये किताब, इसको किताब कहते हैं ना, हालांकि ये किताब नहीं होती। किताब बमानी मकतूब, लिखी हुई चीज। जैसे आप इसको समझिए कि लफ्ज होता है ना लिबास, लिबास क्या होता है? कपड़े। मानी क्या होता है? मलबूस। आप पहने होते हैं ना, आपने जो कपड़े पहने हुए ना, ये लिबास नहीं है, ये मलबूस है। लेकिन जैसे किताब से लिबास और मलबूस से मकतूब, लिखी हुई चीज, मुराद जहां कुरान मजीद है। किताब अनज़ल ना हुई लेख, आगे भी आएगा, हम पढ़ते हैं। मक्का वालों से निकाल कर अल्लाह अपने प्यारे नबी को मदीना वालों के पास लाए, खाली हाथ नहीं आए, आप सिलेबस साथ लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिंदगी गुजारने का वो नुस्खा था जिसको बाद में शायरों ने नुस्खा कीमिया भी कहा, कि जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों से लेकर मरने से बाद तक के आमाल उसमें बताए जाते हैं। गोया के जालिकल किताबू, ये है वो किताब, ला रही बफी, नहीं कोई शक इसमें। ये देखिए क्या प्यारी बात कह दी गई, कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। लफ्ज रैप को थोड़ा सा देखते हैं, ला बहुत सिंपल है, ला ऐसे जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं नो। अच्छा, उर्दू में देखें, आपने किसी को नो कहना हो तो क्या कहते हैं? नहीं, कोई कहता है खाना खा लो तो आप कहते हैं नहीं खाना। वो जरा सा फिर कहता है थोड़ा सा खा लो, कहते हैं नहीं खाना, थोड़ा उसी लफ्ज में शिद्दत आ जाती है। और कोई कहता है नहीं एक नवाला तो खा लो, तो आप कहते हैं हरगिज़ नहीं खाना। ऐसी है ना, अरबी जुबान में एक लफ्ज है नो, ला, फिर लन, हरगिज़ नहीं, कल्ला, नेवर। आपको मैं इंशाल्लाह इस दफा सारे ये मिलते जुलते अल्फाज लिखाऊंगी। यहां बिल्कुल सिंपल बात है, ला किसी दर्जे का, हल्का सा भी क्या नहीं है, रईब शक किसमें। लफ्ज रैप को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अरबी जुबान में लफ्ज शक शुबे के लिए 6 लफ्ज आते हैं। जरा लिखिए, इंजॉय करें, मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, जो आसान लगे वो लिख लें। शक लफ्ज जिस वक्त हमारे सामने नहीं बल्कि रैब है, ये भी कुरान के लफ्ज है। आप उर्दू में कहते हैं ना मुझे शक है, तो ये उर्दू का लफ्ज नहीं है। कुरान पाक में ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 10 से गालिबन, अफिल्लाही शक्कुन फातिर समावाती वल अर्दी, क्या उस अल्लाह के बारे में शक करते हो जिसने जमीन और आसमान को फैलाया। अच्छा, लफ्ज शक क्या होता है? दो नजरिए मेथडोलॉजीज, उनका जहन में बराबर होना, कभी एक को तरजीह करने को दिल दे कभी दूसरे को, लेकिन समझना है क्या करूं। मिसाल देती हूं, आपने कुरान सीखना है, दिल में शक है, शक वो नहीं है कि गलत से कि सही, दो नजरिए जहन में बराबर चल रहे हैं। मसला आपको कुरान की भी तालीम लेनी है और स्कूल की भी पढ़नी है, तो आप सोचते हैं वो भी जरूरी तो ये भी जरूरी, जबकि किसी एक को तरजीह देने के लिए कोई दलील ना हो, तो आपको समझ नहीं आ रही, कुरान भी नहीं छोड़ सकती, ये तो मेरी खुराक है, तो फिर स्कूल का छोड़ दूं, नहीं स्कूल भी नहीं छोड़ सकती। बात वैसे, शक क्या होता है? दो चीजों के बीच में टैली कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। दूसरा लफ्ज अरबी जुबान में शक के लिए आता है शुभा, शुभ। शुभा कहते हैं दो या ज्यादा चीजें इतनी मिलती जुलती हों कि सही कौन सी है इसका पता ही ना चले आपको, और ये अमूमन रंग और सिफात में होता है। पढ़ेंगे आप सूरत मायदा में आयत 156, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। हजरत ईसा को कत्ल करना की जो कोशिश उन्होंने की थी उसका जिक्र है, कि ना तो उन्होंने ईसा को कत्ल किया ना सूली पे चढ़ाया, बल्कि शुबा पड़ गया। चलें इसी सूरह बकरा की मिसाल ले ले, आयत 70, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, इस गाय के बारे में तुम्हें शुबा ही पड़ गया। तीसरा लफ्ज शक के लिए अरबी में आता है मिरिया, मीम रा या इसका रूट है। मिरिया में दो चीजें होती हैं, नंबर एक किसी हकीकत या नजरिए का यकीन होना कि वो ठीक है, लेकिन इस हकीकत को लोगों की मशकूक बातों से शक में पड़ना। चलिए आसान कर देती हूँ, आप यहाँ आ रहे हैं पिछले 6 माह से, आप कहते हैं काफी अच्छा पढ़ाते हैं, सीधे सीधे हैं, कोई इन्होंने इधर उधर की बातें नहीं बताई, ठीक है अल्लाह का शुक्र अच्छी जगह पे आ गई हूँ। नीचे उतरे, किसी ने आपसे कहा किधर से आई हैं, आप कहते इधर, कहते इधर तो 2 स्कूल हैं, आप किधर गई, आप कहते फोर्थ फ्लोर, इधर आओ किधर चल पड़ी हो। वो दो चार बातें आपके कान में डाल दें। अब जो 6 माह से आपका दिल जमा हुआ था ना, किसी की बात सुनकर आप मशकूक हो गए, इसको मिरिया कहते हैं, झगड़ा। सूरत कमर में भी आता है ना, आयत 55 में, फबियाई आलाय रब्बी का ततमारा, ए इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पे झगड़ेगा, यानी झगड़े की कैफियत आने लगती है। तो मिरिया किसी हकीकत के मुतल्लिक लोगों के पैदा करदा शक शुबे, और अफसोस के साथ कहूंगी कि आज दीन की तालीम के साथ तो लोग बड़े ही शक शुबे डालते हैं, और किसी पर डाले ना डाले। इसी तरह ये लफ्ज़ कुरान में आता है, फला तकुन फी मिरियत मिल लिकाई ही, कि अल्लाह से मुलाकात के बारे में शक ना कीजिए। चलिए मरीच, चौथा लफ्ज़, मरीच, मरा जैसे, दो चीज़ों का या दो नज़रियात का आपस में रल मिल जाना। जब दरख्तों की लकड़ियां एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं ना, गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, उसको भी कहते हैं गुस्नुन मरीज, बेतरतीब होना, गुड़मुड़ होना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्कैटर्ड थॉट्स, पेचीदा होना। महाराजा कहते हैं किसी एक ख्याल का आना जाना, इस तरह तरद्दुद के मानों में। अल्लाह ताला कहते हैं बल कज़्ज़बू बिल हक़ कि लम्मा जाहुम फहुम फी अम्रिन मरीज, जब इनके पास हक आ गया तो इन्होंने इसको झुटला दिया। तो गोया कि ये भी लफ्ज़ यहाँ सेट नहीं। अभी देखेंगे जब आप रैप पे आएंगे तो आपको आपका दिल गवाही देगा कि यहाँ ला रही भी था। हम ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ ला मरीच, ला मिरिया, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, उसमें झोल नहीं है। फिर इस तरह आप देखिए कि एक और लफ्ज़ है शक के बारे में अरबी जुबान में जो इस्तेमाल होता है, लफ्सुन, लफ्स, लबस यल बिसु, दो चीज़ों को आपस में खलत मलत करना। वला तलबिसुल हक बिल बातिल, सूरह बकरा आयत 43, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। इसी तरह बल हुम फी लफ्स मिन खलकिन जदीद। चलिए अब आते हैं हम रईब पे, जो हमारे सामने है। रईब कहते हैं ऐसा शक जिसमें इस्तरार का उनसर हो। इस्तरार क्या होता है भला? मजबूरी, आपको कोई मजबूर कर दे कि आप शक करें। रईब दहर कहते हैं अरबी जुबान में गर्दिश अय्याम को, जमाने की गर्दिश, हवादस जमाना। और रईबुल मनून कहते हैं जिंदगी के खतरों को। तो रैब ऐसा शक जो खिलजान और खटका पैदा कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी यही लफ्ज आए हैं, द मा युरीबक इला मा ला युरीबक, ऐसी बात छोड़ दे जो दिल में हिलजान पैदा करे और वह इख्तियार कर जिसमें कोई शक ना हो। तो कुलक के मानों में। अब आप और मैं जरा यहां देखते हैं कि जालिकल किताबु ला रईबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको इस बारे में अगर एक जुमला बोल दूं ना, तो मेरा ख्याल है कि आप उसके बाद 10 जुमले बोलने के काबिल है। जिंदगी में इतने इज़्तिराब थे, क्या ठीक है क्या गलत, किसकी सुने समझ नहीं आता, जिसकी सुनो वही ठीक कहता। एक आलिम से पूछा जो आए शहर में, तो उन्होंने कहा जायज़ है। कुछ अरसे बाद दूसरे आए, उन्होंने कहा हराम है। है कि नहीं हर एक के साथ? आज उम्मत के जहनों में जितने शक और इज़्तिराब है ना, उसका जवाब ज़ालिकल किताबु ला रईब फी। ये मैं अपने ऊपर लेके आपको कहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये किताब जिंदगी में आई है, दिल के अंदर से शक निकल गया, इज़्तिराब निकल गया। यानी मुझे कोई कहे ना कि रात को दिन कह दो और दिन को रात कह दो, तो वो मुझे आसान लगेगा। और अगर मुझे कोई कहे कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, या जो आपके पास है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको कभी ना मानूं। इतना दिल मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ालिकल किताबु ला रईब फी, दिल से शक निकल जाते हैं। और आप नोट कीजिए, शक बहुत बड़ी बीमारी है। रिश्तों में शक आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। खाते खाते आप किसी को, आपको कोई कह दे ना कि पानी पी रहे हैं, इसमें मक्खी गिरी थी, आप प्यास से मर जाएंगे, पानी नहीं पियेंगे। सबसे पहले दिल के बर्तन को शक से पाक करोगे, फिर फायदा होगा। ये ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं, खतरा नहीं। ये किताब तुम्हें बिल्कुल मुतमईन कर देगी, पीसफुल। तुम्हारे जहन से सारी बातें निकल जाएंगी। और आज भी बहुत सारे लोग जो खुद को जिस नफसियाती मरीज समझते हैं ना, असल में शक है, किधर जाऊं, क्या करूं, अल्लाह ने ये मेरे लिए कहा, ये है वो है। और साथ ही देखिए आगे कह दिए, फी ही हुदन, हिदायत है इसमें, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। ये क्या हो गया, फिर हुदन आ गई, पीछे किधर थी हुदन? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फी ही को रोक लिया ला रईब के साथ, तो बात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, बात वाज़े। लेकिन आप कहते हैं कि ला राइब पे रुकना था मुझे, आपकी मर्जी रुक सकते हैं, मैंने आपको शुरू में तीनों ऑप्शंस दे दी थी। आप कहते हैं जालिकल किताब ला रईब, बाज कहते हैं इधर एक फी ही मखजूफ है, एलिमिनेटेड है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी मानी बनता है। क्या पता चला ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, तो फिर है क्या ये होदन? अब लफ्ज होदन पे भी आप कुर्बान जाएं, अगर आप थोड़ी सी भी ग्रामर समझ जाए ना, तो मैं आपको कह सकती हूँ ये लफ्ज होदन और लिल मुत्तकी, ये दो लफ्ज जो एक छोटा सा जुमला है ना, ये एक पूरी कहानी है। थोड़ा सा समझिएगा, अरबी में दो चीजें होती हैं, आप क्या होती हैं छोड़ दीजिए, अलिफ बे कह दीजिए, ए बी सी कह दें, एक को कहते हैं सिफत और एक होता है हाल। चलिए उर्दू में समझाती हूँ। आप कहते हैं बड़ा घर, ये घर की सिफत है ना, फलां आदमी बहुत लंबा है, खूबसूरत लड़की, सिफत बयान हो रही है ना। लेकिन आप किसी को कहते हैं वो चल रही है, वो खा रहा है, वो रो रही है, अब क्या फर्क है इसमें? इसमें उसका हाल बयान है, चलने का हाल, रोने का हाल, बैठने का हाल, ठीक है? बस आप कह लें कि होदन जहां हाल है, सिफत नहीं है। बस आप कहते हैं वो साबिर है, ये उसकी सिफत है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि इस वक्त भी सब्र कर रहा है कोई। मुश्किलों में ना डालू ना, तो होदन सिर्फ एक लफ्ज है इधर। ये कहकर अल्लाह ने मुझे आपको बता दिया कि हिदायत एक हाल है, निकलती रहेगी, चलती रहेगी, जितना इसको अपने ऊपर लेते जाओगे ये तुम्हारी जिंदगी से दिखेगी। ये शेल्फ में रखने वाली चीज नहीं है, इसको खोलो, इसको पढ़ो, इसको देखो, इसमें से अपनी जिंदगी के लिए नुक्ते निकालो, तो गोया कि इसमें इंक्रीज का मानी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा, यहां हम कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है, ये हाल है तकवा वालों का, तकवा वालों को अपनी पड़ जाती है। अब ये तकवा वाले कौन है, थोड़ा सा इससे भी रूशनास हो जाइए। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन का लफ्ज है ना, ये अल मुत्तकी की जमा है, और इसका अगर आप मादा या रूट देखेंगे ना, वाव काफ या, विकायतुन कहते हैं बचाने को, अरबी जबान में सबसे ज्यादा कहते हैं कि इसी रूट से लफ्ज आए हैं। ये इतने मुख्तलिफ मानों में आपके मेरे सामने आता है कि आप और मैं समझते नहीं। अच्छा, ये जो हुदन लफ्ज था ना, इसका भी थोड़ा सा एक मानी भूल गए, लिखिए हुदन कहते हैं हिदायत, मोहब्बत और नरमी के साथ रहनुमाई करने को, यानी गाइड विद लव। और पीछे भी बात हुई थी तो हुदन इज हदिया, गाइडेंस इज अ गिफ्ट। किसी को बड़े प्यार से अगर कोई गाइड करे ना, तो आप कह सकते हैं कि उसने गाइड किया, और सर पे डंडा मार के गए ना, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, नमाजें पढ़ो, पढ़ते नहीं, गुनाहगार, जहन्नमी, यानी जो माएं तकरीरें करती हैं ना इतनी लंबी चौड़ी बाप बच्चों के सामने, वो हुदन नहीं होती। हुदन में क्या प्यार, नरमी, मोहब्बत के साथ उनको एहसास हो जाए कि ये मेरे बच्चे के लिए कितनी जरूरी चीज है। मुत्तकीन के लफ्ज को अगर आप देखें, नंबर एक, जिस चीज से नुकसान पहुंचने का खतरा हो उससे बचना। इसी तरह तकवा का दूसरा मानी होता है किसी आफत के जाहिर होने से डरना। इसका इस्तेमाल हुआ है सूरह जुमर में, वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, के जन्नत की तरफ लेके जाया जाएगा। तकवा क्या होता है, मुत्तकी कौन है? आप कहते परहेजगार, है ना हमारे कुरानों में ये तर्जमा, परहेजगार नहीं, मुत्तकी कहते हैं उस शख्स को जो खुद को बदलना चाहे, जिसको तड़प लग जाए कि मैंने अपने आप को बदलना है। जो बीमार है वो कहता है मैंने सेहत जाप होना है, तो जब आप ये कहते हैं ना कि जालिकल किताब ला रही बफी हुदल्लिल मुत्तकीन, तो इस एक या डेढ़ आयत का मतलब क्या बना कि इस दिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगी थी, जवाब मिल गया जालिकल किताब, ये है वो किताब। आप कहते हैं डाउट्स आ रहे हैं जहन में भी, कहा नहीं नहीं ला रही बफी, शक नहीं है, इसकी शर्त लिख लें, आप भी अपने कुरान के पेज पे लिख लें, इस किताब से फायदा सिर्फ वो लोग उठाते हैं जो इस बात का शक दिल से निकालते हैं कि शायद ये अहम है कि नहीं। डबल माइंडेड बंदा कभी कुरान पे नहीं आएगा, आप चॉइस ले लें, कुरान का कोर्स करूं या लैंग्वेज सीखूं। मैं आपको भी बताऊंगी, आप लैंग्वेज सीखेंगे, कुरान का कोर्स कर लूं कि जॉब कर लूं, डेफिनेटली आप जॉब करेंगे। ये इस किताब सिर्फ उसको फायदा देती है जो कहता है ला रोइबा फी, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं कि पहले ये करना है फिर दूसरा करना है। सिर्फ एक आयत है आपके पास तर्जमा याद करने की, दोहराएंगे जरा मेरे साथ मिलके, मैं पढ़ती हूँ मेरे साथ साथ पढ़ें, और घर में से फिर आपने इंशाल्लाह इसको याद करना है। बिस्मिल्लाह तो हमने पीछे पढ़ ही ली थी ना, अलिफ लाम मीम,
अलिफ लाम मीम,
حروف مقطعات ہیں.
ذالک
یہ
الکتاب
کتاب ہے.
لا نہیں
ریب
شک
فیہ
اس میں
ہدن
ہدایت
لی
واسطے
المتقین
تقوی
والوں کے. ٹھیک ہے, اس کو 15 دفعہ آپ نے کم سے کم اور باقی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے عمل کی باتیں آسان کر دے. اور کوئی سوال, کوئی بات, کوئی کمنٹ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورۃ البقرہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.